सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भगवान अर्जुन के सात प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें हमने छह प्रश्नों के उत्तर देख लिए। सातवां प्रश्न हमारा चल रहा है। सातवां प्रश्न क्या है? प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियत आत्मभिः। संयत चित्त वाले योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार जाने जा सकते हैं, इस प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। अंतकाले, अंतकाले मतलब लास्ट में, मरण काले। जो पुरुष अंतकाल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर विष्णु का ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, मतलब लास्ट थॉट जो है भगवान का जिसका होता है, वह मेरे भाव को अर्थात विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है। अगर आप विष्णु का नाम ले रहे हैं तो विष्णु को प्राप्त होंगे, शिव का नाम ले रहे हैं तो शिवलोक पहुंच जाएंगे, जिस देवता का नाम लेते हैं उस देवता के पास आप पहुंच जाएंगे। इस विषय में प्राप्त होता है या नहीं ऐसा कोई संशय नहीं है, डोंट डाउट। इसके ऊपर आप संशय कभी ना करें कि लास्ट थॉट आपको जहां ले जाएगा, वो जो थॉट होगा, जैसी भावना होगी, वैसी जगह आप पहुंचोगे। भगवान कहते हैं केवल मेरे विषय में यह नियम नहीं है, ये ऐसा नियम कि आप अगर मेरे बारे में सोचो मेरे पास पहुंचोगे। भगवान कहते हैं यह नियम दूसरी जगह भी एप्लीकेबल है। क्या है ये नियम? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ए कुंती पुत्र, प्राण वियोग के समय जीव, जब आपका प्राण निकल रहे हैं, जिस जिस भाव का अर्थात जिस किसी भी देवता विशेष का आप चिंतन करते हैं, आप मान लो इंद्र की चिंता किए, वायु की चिंता किए, या अग्नि देवता की चिंता किए, जिस भी देवता की आप चिंता करेंगे, चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस भाव से भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है। आपने जिस देवता का स्मरण किया उस जगह आप पहुंच जाएंगे, अन्य को नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप शिव का नाम लेंगे तो और आप जो है राम के लोक में पहुंच जाएंगे या बैकुंठ पहुंच जाएंगे, आप शिव लोक पहुंचेंगे। जिस देवता का स्मरण करेंगे उस देवता के ही लोक में पहुंचेंगे। उपास्य देव विषय भावना का नाम तद्भाव है। वह जिसने भावित यानी बारंबार चिंतन करके करने के द्वारा अभ्यस्त किया है उसका नाम तद्भाव भावित है। ऐसा होता हुआ उसी को प्राप्त होता है। तो नियम यह है कि आपकी लास्ट वृत्ति जो होगी, जिस चीज की होगी, आप वहां पहुंच जाओगे। यह नियम हुआ। फिर भगवान कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार अंतकाल की भावना ही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण है। नियम यह है, आप जो वृत्ति आपकी लास्ट होगी उसके हिसाब से आप पहुंच जाओगे। सावधान रहना, लास्ट वृत्ति किसकी होनी चाहिए? आपके परिवार की नहीं होनी चाहिए, आपके घर की नहीं होनी चाहिए, आपके बैंक बैलेंस की नहीं होनी चाहिए, संसार के विषयों की नहीं होनी चाहिए, किसी खाद्य पदार्थ की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वहाँ पहुँच जाएंगे। भगवान कहते हैं ये नियम, तो फिर भगवान कहते हैं तस्मात, देयरफोर, आपको हमने नियम बता दिया, आपको क्या करना है? तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐसी असंशया। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण करे और शास्त्र आज्ञानुसार स्वधर्म रूप युद्ध भी कर। दो काम करने हैं हमें, भगवान का स्मरण भी करना है और अभी जो रिटायर्ड हो गए हैं तो उनकी बात दूसरी है, जो रिटायर्ड नहीं है वो कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म करें? शास्त्र आज्ञा अनुसार। शास्त्र आज्ञा अनुसार का मतलब क्या हुआ? कि जैसा आपको हमने बताया है कैसे कर्म करना है, भगवान ने ऑलरेडी बता दिया हमें, चैप्टर 3, 4, 5 में बता दिया हमें कि कैसे हमें कर्म करने हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपना कर्म कर। अर्जुन तुम युद्ध कर। क्यों? अर्जुन क्षत्रिय है, उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। कैसे युद्ध कर? शास्त्र आज्ञा अनुसार, जैसा मैंने तुमको बताया है, कर्मयोग के हिसाब से आप युद्ध करो। और इस प्रकार मुझ वासुदेव जिसके मन बुद्धि अर्पित है, ऐसा तू मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर मुझको ही अर्थात मेरे यथा चिंतित स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। अगर हम सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहें, हम अपने कर्तव्य अगर कर्म जब कर रहे हैं तब भी शास्त्र की आज्ञा अनुसार भगवान की खुशी के लिए कर्म करेंगे, तो पीछे हमारे मन में जो है भगवान 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 सप्त में रहेंगे, सप्त में रहेंगे। ये सिंपल साइंस है, सिंपल विज्ञान है, सहज विज्ञान है ये। तस्मात सर्वेषु कालेषु, सब काल में निरंतर हमको भगवान का चिंतन करना है। आप ऐसा नहीं सोच लेना कि हमको अपने सारे कर्म छोड़ के अब माला लेके खाली बैठ जाना, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण भी करो, अपने कर्तव्य कर्म भी करो। इसलिए अर्जुन को कहते हैं युद्ध कर, उसको ये नहीं कहते तो युद्ध नहीं कर, तुम जाके माला लेके बैठ जा, ऐसा नहीं कहते हैं। तो हमें भी क्या करना है? अपने जो कर्म है, अपने जो हमारा वर्ण है, आश्रम है, उसके हिसाब से जो हमारे कर्म बताए गए हैं उसको करें। हम आगे बताएंगे भगवान हमारे आश्रम के हिसाब से हमारे लिए क्या कर्म है, वो भी बताएंगे भगवान। तथा उसके बाद भगवान कहते हैं, ये देखो ये उपासना नंबर 1 है। मैंने आपको बताया था कि भगवान 3 उपासना बोलने वाले हैं, तो ये उपासना नंबर 1 है, 8, 9, 10। उपासना नंबर 2 है 11, 12, 13 और उपासना नंबर 3 है 14। और उसका फल क्या है वो 15वें श्लोक में आएगा। तो हम पहले उपासना नंबर 1 देखते हैं, जिसका एक श्लोक हमने देख लिया था, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन। अभ्यास योग युक्त, अभ्यास योग युक्त का मतलब क्या हुआ कि आप जो है उस दिव्य पुरुष को कंटिन्यूअसली याद करते हो, अभ्यास योग कंटिन्यूअसली आप जो उसका चिंतन करते हो। अच्छा, ये अभ्यास कितने दिन तक करना है? हमने देखा था दीर्घ काल तक करना है, दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करना है। अच्छा, भगवान कहते हैं यहाँ पर, शंकराचार्य जी कहते हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त अनन्यगामी चित्त द्वारा, अभ्यास योग कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करना है, और उस चिंतन में मन कैसा होना चाहिए? अनन्यगामी, और जो चित्त जो है विषयों की तरफ नहीं जाए और किसी तरफ नहीं जाए, अर्थात चित्त समर्पण के आश्रयभूत मुझ एक परमात्मा में ही विजातीय प्रतीतियों के व्यवधान से रहित। विजातीय वृत्तियों के व्यवधान से रहित मतलब क्या हुआ? विजातीय वृत्ति नहीं आनी चाहिए, मतलब क्या? सजातीय वृत्ति रहनी चाहिए, बराबर भगवान का जब चिंतन करते हैं, कई बार क्या होता है, हम समाधि में बैठते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, माला करते हैं, माला हाथ में चलती रहती है, मन और कहीं चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि उसमें जो है तुल्य प्रतीति की आवृत्ति का नाम अभ्यास है, सजातीय वृत्ति प्रवाह जो है कंटिन्यूस जो चलती रहेगी उसका नाम अभ्यास है, वह अभ्यास ही योग है। और ऐसे अभ्यास रूप योग से युक्त उस एक ही आलंबन में लगा हुआ विषयांतर में न जाने वाला जो योगी का चित्त है, उस चित्त द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार चिंतन करता हुआ योगी परम नृत्य से दिव्य पुरुष को पा लेता है, दिव्य पुरुष को पा लेता है। अच्छा, वो परम पुरुष क्या है, वो दिव्य पुरुष क्या है, तो इसके बारे में अब जो है अगले श्लोक में, नौवें श्लोक में भगवान बताएंगे कि अनुचिंतनीय पुरुष की दृश्य है वो परमेश्वर कैसा है, किसका चिंतन करें। अभ्यास योग आपने करने को कहा ना, उपासना नंबर एक में उन्होंने कहा अभ्यास करो, किसका अभ्यास करें, कौन है वो परमात्मा, तो भगवान जो है अब नौवें श्लोक में बताते हैं उस परमेश्वर के लक्षण।
कविम पुराणामनुशासितारम,
कविम पुराणामनुशासितारम,
अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः,
अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः,
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्,
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्,
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्,
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्,
कविं पुराणं मनुशासितारं, अनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
तो उस परमेश्वर के आठ लक्षण यहां बताए गए हैं, आठ लक्षण बताए हैं। कविम, कविम क्या होता है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं क्रांतिदर्शिनम सर्वज्ञम, जो क्रांतिदर्शी है और सर्वज्ञ है। क्रांतिदर्शी मतलब का मतलब क्या हुआ कि वह भविष्य को जानता है, वह भूतकाल को जानता है, वह वर्तमान काल को जानता है, इसलिए वह सर्वज्ञ है। कवि का मतलब ये नहीं सोच लेना जैसे हमारे यहाँ पोएट होते हैं, कविता सुनाइए आप, परमात्मा वो कवि नहीं है, परमात्मा क्रांतिदर्शी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब काल को जानते हैं, सब जीव के जानते हैं, सब जीव के, सब काल के, सारे कर्मों को, सब कुछ वो भगवान जानते हैं। पुराणम, पुराणम चिरंतनम, सबसे पुराना, सबसे पुराना, वो काल से भी पुराना है, मतलब टाइम भी जो है बाद में शुरू हुआ है, वह अनादि है, क्योंकि वो अनादि है इसलिए वो अनंत हैं, अनंत है मतलब नित्य हैं, नित्य मतलब चिरंतनम। पुराणम अनुशासितारम, अनुशासितारम अनुप्लस शासिता, सकल जगत नियंतारम, सारे जगत का वो नियमन करते हैं, शासन करते हैं, कैसे नियंता है, सबको कर्मफल देते हैं, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है, मैं कर्म फल दाता वो परमात्मा है, इसलिए वो नियंता है। अनु अनियांसम, अनु अनियांसम सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, हम सूक्ष्म किसको मानते हैं, परमाणु को हम लोग बोलते हैं, बहुत सूक्ष्म है, परमाणु को देखने के लिए आपको जो है दूसरे यंत्र का जो है आपको उपयोग करना पड़ता, तब आप एक परमाणु को देख पाते हैं, भगवान उससे भी जो है अणु हैं। या अगर वेदांत की भाषा में कहें तो आकाशादपि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म किसको कहते हैं, जो सर्वव्यापक है, तो पंच महाभूतों में सर्वव्यापक आकाश है, आकाश सबको अवकाश देता है, सबको स्पेस देता है, मगर वो भगवान उससे भी सूक्ष्म है, आकाशात सूक्ष्मतरम, तो हम ऐसा कह सकते हैं आकाशात कालात अपि सूक्ष्मतरम, काल से आकाश से भी वो सूक्ष्म है, मतलब क्या हो गया? दुर्विज्ञेय, जानना बहुत कठिन है, वो इतनी सर्वव्यापक हैं कि उनको जानना बहुत मुश्किल है। सर्वस्य धातारम, सर्वस्य पोषकम, सबका पोषण करते हैं। शास्त्र में आता है वो क्या है, वह रस है, रसो वैसा है, ऐसा उपनिषद कहता है। भगवान क्या है? बोले रस है। रस का मतलब सबको आनंद देते हैं। हमने कई बार देखा है आनंद का सोर्स कौन है, आनंद का सोर्स तो वही परमात्मा है, सबको आनंद देते हैं। दूसरा, वो सबके कारण है, हर चीज का जो है कॉज जो है वो हेतु वही है, सबको आश्रय भी वही देते हैं। आश्रय देते मतलब उनका एग्जिस्टेंस, उनका जो है सत्ता, अगर हमारे पास ना हो तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, तो आश्रय भगवान ने दिया। और वो भगवान कैसे हैं? वो चैतन्य स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप है, सबको सत्ता देते हैं, सबको चेतन देते हैं और सबको आनंद देते हैं। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूपम मनसा वाचा अगम्य, मनसा वाचा, आप अगर चाहें कि उस परमात्मा को अपने मन से और वाच से, वाक से उसको डिफाइन कर देंगे, उसको संज्ञा दे देंगे, नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा, आप मन से उसको नहीं पकड़ सकते। शास्त्र में आया है, तैतरीय उपनिषद में लिखा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां से वाणी वापस आ जाती है, मन वहां तक नहीं पहुंच पाता है। वहां पहुंचने के लिए आपको वाणी और मन के पार करके जाना पड़ता है, वहां मानी और वाणी और मन नहीं है। इसलिए अचिंत्य रूपम नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुष, कठोपनिषद ने कहा। देखो तैत्तरीय उपनिषद ने भी ऐसा कहा, कठोपनिषद ने भी ऐसा कहा, नैव वाचा, वाक से पकड़ा नहीं जा सकता, न मनसा, माइंड से भी नहीं होगा। तो वहां एक और चीज बता दे कि आंख से भी नहीं देख सकते उसको, आंख से भी देख। देखो याद रखना, यहां भी हम उस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं जिसका रूप नहीं है। उपासना नंबर एक के अंदर पहले अभ्यास योग की बात की, उसके बाद किस पुरुष के बारे में चिंतन करना है उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं, उसके 8 लक्षण बता रहे हैं, मगर उसका रूप का वर्णन नहीं कर रहे हैं, याद रखना। और उनकी महिमा असीम है, महिमा अनंत है, इसलिए अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, सूर्य के रंग उसका स्वरूप है। स्वरूप आदित्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, स्वप्रकाशकम और सर्व अवभाषकम, सबको प्रकाशित करता है और सेल्फ ल्यूमिनस भी है। चेतन कैसा है, चेतन भी वैसा ही है, स्वयं ज्योति है और सबको चेतन देता है। देखो सिमिलरिटी है ना सूर्य के साथ में, सूर्य स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाशित करता है। अब वो परमात्मा क्या है, वो परमात्मा भी स्वयं ज्योति है, सेल्फ इफल्जेंट, और सबको चेतन भी देता है, वही दे रहा है। तमसः परस्तात, तमसः परस्तात अंधकार से परे, अंधकार से परे मतलब अंधकार का नाशक है, अज्ञान का नाशक है। जहां वह है वहां अज्ञान नहीं, जैसे जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं, वैसे ही जहां उस परमात्मा का ज्ञान हुआ आपको अज्ञान चला गया। किस चीज का अज्ञान? परमात्मा के बारे में जो अज्ञान था वो चला गया। यह अनुस्मरे, जो साधक इस तरह उनका सदा चिंतन करता है वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेता है। देखो आगे के जमाने में देखो लोग अपने बच्चों का नाम कैसे रखते थे, नारायण रखा, कृष्ण रखा, राम रखा, लड़की होगी तो लक्ष्मी रखेंगे, दुर्गा रखेंगे, ऐसा रखते थे। पता है क्यों रखते थे? ये कारण है, मरने के टाइम अगर अपने बच्चे को ही बुला रहा हो, नारायण नारायण राम कृष्ण कहाँ हो तुम लोग, भगवान सोचते मेरे को बुला रहा है, ही इज गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, इतने दयालु हैं भगवान। अभी लोग क्या रखते हैं नाम अपने बच्चों का, बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लोग ऐसा कहते हैं चुन्नू मुन्नू पिल्ला, अब पिल्ला नाम रखोगे तो कहाँ पहुंचोगे बताओ, पिल्ला को बुलाओगे तो कौन देवता है पिल्ला। अब उपासना नंबर एक की समरी देखिए, उपासना नंबर एक की समरी क्या हुई, पहला स्टेप क्या है, अभ्यास योग से मन केवल भगवान का चिंतन करता है, मन दूसरे विषयों में नहीं जाता है, ऐसे पुरुष परम पुरुष परमात्मा को लोक में वे लोग जाते हैं जो ऐसा अभ्यास करते हैं, जिस भगवान का चिंतन करते हैं और चिंतन करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, वो परमात्मा कैसा है तो उसके 8 लक्षण हमको बता दिए श्लोक नंबर 9 में। फिर क्या होता है, फिर अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, दसवां श्लोक,
प्रयाण काले मनसा चलेन,
प्रयाण काले मनसा चलेन,
भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव,
भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव,
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक,
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक,
सत्तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम,
सत्तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम,
प्रयाणकाले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम।
देखो यहाँ पर 8वें श्लोक में अभ्यास योग बताया, 9वें श्लोक में 8 लक्षण बताएं, उपासना नंबर 1 की बात चल रही है, और 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि राज योग उसके साथ जोड़ना है। 3 चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, अभ्यास करना है और उस परमात्मा के लक्षण के ऊपर में हमको विचार करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है, और राजयोग। राजयोग क्या है ये देखते हैं। स उपैति, वह उपासक, वह योगी प्राप्त कर लेता है, उपैति प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है, भक्त्या युक्त, भक्ति युक्त पुरुष है, भक्ति माने परम प्रेम, जिससे प्रेम होता है ना उसके विचार बार बार आते हैं, उसके विचार बार बार आते हैं। देखो लोग जो है ना, पत्नी पति की फोटो पर्स में रखती है और पति पत्नी की फोटो रखता है, ऑफिस में भी जाता है, अगर किसी तरह भूल जाए बटुआ निकाल के देख लेता है, कंटिन्यूस याद करता है। देखो ऐसा होता है, जिससे आपका प्रेम होता है उसका विस्मरण करना बड़ा कठिन है। देखो वेदांत के अंदर जो है ना, निधि ध्यासन भी भक्ति है, उस पर परमात्मा की और उस आत्मा का चिंतन करना भी भक्ति है। विवेक चूड़ामणि में आया, स्व आत्म तत्व अनुसंधानम भक्ति इति अपरे जुगु। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अनुसंधान करना भी भक्ति है, आत्मा के बारे में चिंतन करना ये भी भक्ति है। ज्ञानी अगर अहम ब्रह्मास्मि का सदा चिंतन करता है तो भी भक्ति है, वो भी भक्ति है। अच्छा, सजातीय वृत्ति प्रवाह प्रेम के बिना कभी नहीं होगा। अगर आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो सजातीय वृत्ति प्रवाह नहीं होगा। आपकी वृत्ति कहाँ जाएगी, जहाँ आपकी प्रेम की वस्तु है। अगर आप प्रेम विषयों के साथ करते हैं और माला लेके बैठे भी हैं तो आपका मन कहाँ जाएगा, प्रेम विषयों से विषय में जाएगा। आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं भगवान के सामने, प्रेम जो है अपने बच्चों के साथ है, मन कहाँ जाएगा, बच्चों के बाहर जाएगा। तो जहाँ प्रेम होगा वहीं पर मन जाता है। तो हमको जो है प्रेम करना होगा भगवान से। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में आया ना, परम प्रेम रूपा, भक्ति क्या है, परम प्रेम रूपा। और दिन दिन बढ़ती है, ये दिन दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा, प्रयाण काले मरण समय योग बलेन चैव, योग बलेन चैव ना राजयोग। देखो यहां पर राजयोग करना है, तो अभ्यास योग आया पहला, उसके साथ में 9वें श्लोक में 8 लक्षण बताए, और दसवें श्लोक में बोलते हैं उपासना नंबर वन में आपको राजयोग की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्या है भाई, भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश सम्यक, ये भ्रुकुटी के मध्य में यहां पर प्राण को लाओ, प्राण को इस जगह लाना है राजयोग से, आज्ञा चक्र में लेके आओ। और मन कैसा हो, मनसा अचलेन योग बल से, यानी निश्चल मन से भगवान का स्मरण करता हुआ, मन जो है और कहीं उधर उधर नहीं जा रहा है। तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होगा। हम लोग का ये विषय नहीं है कि हम कैसे इस आज्ञा चक्र में लाएं, वो राजयोग जो है दूसरी लाइन है। भगवान कहते हैं कि राजयोग करके, अभ्यास योग करके एवं इस तरह से चिंतन करते हुए, उपासना करते हुए तुम हमारे पास पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो। तो पहले ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, हाँ, इतना काम करने के बाद में आप कहाँ पहुंचोगे, ब्रह्मलोक में पहुंचोगे। कहाँ ये ब्रह्मलोक, अब राम भक्त हो तो साकेत, शिवलोक, जहाँ के जिस देवता के भक्त हो वहाँ पहुँचेगा, ये सारे के सारे ब्रह्मलोक के अंदर ही हैं। फिर वहाँ जाके, अब राम भक्त हो तो राम जी आपको ज्ञान दे देंगे, शिव भक्त हो तो शिव जी ज्ञान दे देंगे, कृष्ण भक्त हो वैकुंठ में भगवान कृष्ण आपको ज्ञान दे देंगे, और आपकी मुक्ति हो जाएगी। चूंकि ये टू स्टेज में जाके मुक्ति होती है, इसको हम कहते हैं क्रम मुक्ति। इस उपासना से मुक्ति नहीं हुई, उस उपासना से आप उस ब्रह्म लोक में, उस वैकुंठ में, साकेत में, शिवलोक में पहुंचे, वहां पर वो आपके भगवान इष्ट देवता आपको ज्ञान देंगे, उसके बाद मुक्ति, इसलिए उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वापस आना होगा। तो उपासना नंबर को अगर हम समराइज करें तो अभ्यास योग करना है, परम पुरुष परमात्मा के 8 लक्षण हमने देखे, और फिर ऐसा भक्त अपने योग बल से मन को एकाग्र करता है और भगवान का चिंतन करता है, फिर वह अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आज्ञा चक्र पर लाता है। ये सुषुम्ना नाड़ी देखो, ये बहुत लंबा चौड़ा झंझर है, वो कई चक्र हैं, वहाँ से आपको आस्ते 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 यहाँ से आके यहाँ पर लाना है, और फिर उसके बाद प्राण यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ योग है और भक्ति का कॉम्बिनेशन है। योग मतलब राजयोग, दसवें श्लोक में आया ना वर्ड, एक आया है योग, राजयोग और भक्ति का कॉम्बिनेशन है। भक्ति कैसे आपको पता लगेगा, मनसा चलेन भक्त्या युक्त, ये भक्ति है। दसवें श्लोक में दो चीजें है, राजयोग और भक्ति है। तो कुछ लोग इसका अभ्यास करते हैं, तो यहां पर उस परमात्मा के 8 लक्षण छोड़कर और कोई आपके पास आलंबन नहीं है। कवि पुराणम अनुशासितारम, ये सब जो हमने देखा ना अभी 9वें श्लोक में, बस आपके पास आलंबन यही है परमात्मा का, और आलंबन नहीं है। अब उपासना नंबर 2 देखिए, तो उपासना नंबर 2 के अंदर क्या है, इसमें भी राजयोग है, भक्ति है, और तीसरा ओंकार का आलंबन है, ओंकार का आलंबन है। उपासना 1, उपासना 2, उपासना 2 में राजयोग है, भक्ति है, और ओंकार का आलंबन है। अच्छा चलो देखते हैं क्या है।
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति,
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति,
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः,
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः,
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति,
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति,
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे,
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे,
यदक्षरं वेद विदो वदन्ति।
विशन्ति यद् यतयो भीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। देखो ऐसा एक श्लोक जो है कठोपनिषद में भी आता है, मिलता जुलता ऐसा ही है। यद अक्षरम वेद विदह वदंती, वेद विदह जो वेद को जानते हैं, वेद को जानते हैं मतलब कौन, जो वेद का उच्चारण करते हैं अभ्यास करते हैं क्या, नहीं वो नहीं, जो वेद मंत्र का अर्थ भी जानते हैं। तो एक तो हुआ वेद का चैंटिंग, दूसरा स्टेप होता है वेद की चैंटिंग प्लस उसको अर्थ को जानना, और तीसरा स्टेप है उसके अर्थ को जानकर उस रास्ते पर चलकर उसको प्राप्त कर लेना, मतलब अनुभव कर लेना, अपरोक्ष अनुभूति जिसकी हो जाती है उसको वेदविद कहते हैं। तो वो कौन है, तो वो अक्षरम है, जिसको जानते हैं वो क्या है, अक्षर निर्गुण ब्रह्म, जिसको हम सच्चिद आनंद कहते हैं वो वेदविद। यद अक्षरम वेदविद है बदंती, जिसके बारे में ये लोग कहते हैं वेदविद, उसके बारे में बताते हैं। विसंति यत यत बीद रागा, विसंति मतलब आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं बीत रागा हा, अगर आप उस तत्व के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है आपको बीत रागा होना ही होगा। अभी हमारा राग विषयों के साथ में है, संसार के साथ में है, ओएटी के साथ में है, बीत रागा इनसे डिटैच होना होगा, तभी तो आप उसमें प्रवेश कर सकेंगे। यानी आसक्ति रहित, अटैचमेंट रहित, यतयः सन्यासी जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और वो तत्व में प्रवेश कर चुके हैं, यानी जिन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दिया। प्रवेश करने का मतलब क्या है, ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, स्मॉल आई नहीं है, अब बिग आई रह गया, आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। कैसे समझेंगे, जैसे हर नदी का पानी समुद्र में जाके मिल जाता है फिर नदी का अस्तित्व तो नहीं रहता, अब वो सब समुद्र हो गया, अब इंडिविजुअल जो है रिवर का नाम नहीं रहता वहां पर, सब का सब समुद्र हो गया। यही सम्यक दर्शन कहलाता है। यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को पाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य माने गुरुकुल वास, गुरुकुल वास। आपको अगर उसको वेदांत को, वेद को, उपनिषद को, गीता को अगर पढ़ना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, गुरुकुल वास करना होगा। देखो हम लोग अभी जो गीता सुन रहे हैं ना, वेदांत कोर्स में यही गीता आप सुनेंगे, मगर उसमें आपको लाभ बहुत ज़्यादा होगा। क्यों लाभ होगा ज़्यादा पता है, अभी हम एक घंटा सुनते हैं, फिर 23 घंटा जो है संसार की बात करते हैं, फिर जो हमने बात सुनी है उसको हम फिर भूल जाते हैं, उसके ऊपर मनन नहीं होता है। और गुरुकुलवास के अंदर वो करते क्या है कि आपको जो है वो पकड़ के बंद करके रखेंगे, गेट से बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, चलो भीतर जाओ। और फिर गुरु जो है आपको जो है प्रश्न देंगे, उसका उत्तर देंगे, उसको आपको समझाएंगे, आपको बोलेंगे अब इसका ये बोलो, आके उत्तर दो, हमने ये बताया था। और ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेंगे कि भाई 50 बच्चे हैं, 50 आदमी हैं वहाँ पर कक्षा के अंदर में, तो ठीक है कल मैं आपसे प्रश्न करूँगा, तुम 9वां श्लोक पढ़ के आना, ऐसा नहीं है। वो 50 को बोलेंगे 9वां श्लोक पढ़ के आओ, मेरी जी इच्छा होगी जिसको बोलूंगा उसको खड़े होकर बोलना है, तो आप फांकी नहीं दे सकते वहां। तो गुरुकुल वास के अंदर जो है ये तथ्य जो है, ये समझ जो है बैठती है, बैठती है, इसलिए गुरुकुल वास जो है बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचर्य व्रत का वहां पूर्णतया पालन करना होता है। अच्छा तो ब्रह्मचर्य में क्या प्रधान साधना क्या है, तो प्रधान साधना है वेद अध्ययन, वेद अध्ययन। देखो हम लोग तो अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का जो उम्र थी उसमें तो वेद अध्ययन नहीं किया हमने, कई बार हमारे जैसे जो हैं, जब जो है गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया तब वेद अध्ययन करने के लिए गए, वेदांत कोर्स करने के लिए। बेटर टू बी लेट देन नेवर। अगर हम ये सोचने लगे कि ब्रह्मचर्य तो चला गया, अब क्या होगा, अब अगले जन्म देखेंगे, मनुष्य जीवन होगा तो करेंगे फिर। तो ब्रह्मचर्य में प्रधान साधना है वेद अध्ययन, गृहस्थ आश्रम में प्रधान साधना है यज्ञ और दान। आपको ब्रह्मचर्य, जब आप वेद अध्ययन करते हैं ना, तब आपका लक्ष्य गोल क्या है जीवन का, आपको पता लग जाता है उस टाइम में आपको क्या करना है सारा जीवन। वेद अध्ययन के बाद आपको पता लग जाएगा गृहस्थ आश्रम में आपको मन शुद्धि करनी है, क्योंकि वेद से ये पता लगा हमें कि चित्त शुद्धि करनी है। जो चित्त शुद्धि के लिए क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा। यज्ञ मतलब क्या, भगवान के लिए कर्म करना होगा। चाहे इसको फायर रिचुअल समझिए, तब भी हम मंत्र पढ़ के भगवान को देते हैं ना, हविष देते हैं, सामग्री डालते हैं, फिर कहते हैं ना इदम ममा, ये मेरे लिए नहीं भगवान, ये आपके लिए है। तो अब वो यज्ञ वगैरह का समय चला गया, तो हमको भगवान ने क्या कहा यहाँ पर, बोले आप अपने कर्म मेरे को दो, अब अपने कर्मों से यज्ञ करो, कर्मों से यज्ञ करो, मेरी खुशी के लिए कर्म करो, यज्ञ करो, दान दो, इससे आपकी मन चित्त शुद्धि होगी। फिर वानप्रस्थ में क्या करें हम, तपस करो चित्त एकाग्रता के लिए। तब क्या होता है, मनस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप, मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ये परम तप है। ये कब करना है, हमको वानप्रस्थ में करना है। ये तभी शुरू होगा, आपने अगर वेद पढ़ा होगा, उसके बाद चित्त शुद्धि की चेष्टा की होगी, उसके बाद में चित्त एकाग्रता आएगी। और आप जो है मेडिटेशन में बैठ जाओगे बिना ये सब किए हुए, तब बताओ आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। आप लोग तो बैठते हो रोज, आप लोग को मालूम है क्या होता है फिर। तो आश्रम की प्रधानता यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी है, क्योंकि हम वेद का अध्ययन करना चाहते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस परम पद के लिए तेरे को मैं संक्षेप में कहूंगा। संग्रहेण मतलब संक्षेप में। देखो यत सब जो है ना, इस श्लोक में तीन बार आया है। तो एक बार जब आया है जिसे ब्रह्मविद अक्षर कहते हैं, तत् शब्द आया है, फिर जिससे जिसमें प्रवेश करने के लिए बीत राग होते हैं, दूसरी बार यह आया। तीसरी बार आया जिसे पाने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उस परम पद को पाने के लिए तुझसे संक्षेप में कहूँगा, मगर वह बिल्कुल समझ में साफ आएगा, क्लैरिटी पूरी होगी। भगवान कहते हैं संक्षेप में कहूँगा, ऐसा मत समझना कि मैं कुछ तुमसे लुका कर रख लूँगा, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ बताऊँगा। अच्छा बताइए भगवान क्या करना है। 12वां श्लोक,
सर्वद्वाराणि संयम्य,
सर्वद्वाराणि संयम्य,
मनोरिधि निरुद्ध्य च,
मनोरिधि निरुद्ध्य च,
मूर्ध्न्याध्यायात्मन प्राणम्,
मूर्ध्न्याध्यायात्मन प्राणम्,
आस्थितो योगधारणाम्,
आस्थितो योगधारणाम्,
सर्वद्वाराणि संयम्य, मनोरिधि निरुद्ध्य च, मूर्ध्न्याध्यायात्मन प्राणम्, आस्थितो योगधारणाम्।
सर्वद्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, सब इंद्रियों के द्वार जो भी हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु आदि ज्ञान इंद्रियां, उनको विषयों से हटाकर, सर्वद्वाराणि संयम, उनको कंट्रोल कर दिया। आँख से हम देख नहीं रहे हैं, कान से कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आदि आदि। मन हृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय देश में स्थिर कर लिया, मन को हृदय देश में स्थिर किया, मन और कहीं नहीं जा रहा है, विषयों में नहीं जा रहा है, यानी मन को जीत लिया, यानी मन को जीत लिया, मन में कोई वृत्ति नहीं है, मन में कोई वृत्ति नहीं है विषय की, इसका मतलब क्या, मन शांत है। तो शांत मन चाहिए। देन मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम, प्राण को मस्तक में स्थापित करे, यानी सारी इंडिविजुअलिटी को आज्ञा चक्र में, यहां भी आज्ञा चक्र में आना है, यहां भी आज्ञा चक्र। तो उपासना नंबर एक में राजयोग था, उपासना नंबर दो में भी राजयोग है, ये दो राजयोग दो नहीं है, एक है। जो राजयोग उपासना नंबर में एक में था, वही राजयोग उपासना नंबर दो में भी है। अच्छा, उसके बाद में फिर आस्थित योग धारणा, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर, आसन पर बैठकर, मन को स्थिर कर समाधि का अभ्यास करें। समाधि का अभ्यास छठे अध्याय में कैसे समाधि करनी है ऑलरेडी बता दिया गया है, कैसे समाधि आपको करनी है। तो समरी क्या हुआ, ज्ञानेंद्रियों का निरुद्ध, मन को हृदय में लगाना, कोई वृत्ति ना हो। तीसरा, आज्ञा चक्र में आपके प्राणों को ले आना। और चौथा, समाधि करना। चार चीजें यहां पर भगवान ने कही हैं, चार स्टेप कहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें, 13वां श्लोक।
ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म,
ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म,
व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहम्, सयाति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरन् मामनुस्मरन्, यप्रयाति त्यजन् देहं, सयाति परमां गतिम्।
अच्छा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, व्याहरण मतलब उच्चारण, व्याहरण उच्चारण करना है। किसका उच्चारण करना है, एक अक्षर रूप ओम ब्रह्म का उच्चारण करना है। अच्छा, तो सातवें प्रश्न का उत्तर चल रहा है अभी। सातवें प्रश्न का क्या उत्तर है कि हमको ब्रह्मलोक जाना है। ब्रह्मलोक जाने के लिए क्या क्या करना होगा, उपासना नंबर एक हमने देख ली, उपासना नंबर दो चल रही है। मतलब भगवान चॉइस दे रहे हैं कि अगर जो है परमात्मा के जो आठ लक्षण आपको बताए 9वें श्लोक में, उस पर आपका मन नहीं ठीक से जा रहा है, तो चलो ठीक है, आप एक आलंबन ले लो यहाँ पर। किस चीज़ का आलंबन, ओम का आलंबन। तो चार स्टेप जो बताए गए हैं 12वें श्लोक के अंदर, ज्ञानेंद्रियों का निरुद्ध, मन को हृदय में स्थित करना, प्राण को आज्ञा चक्र में लाना, और चौथा समाधि में बैठना। उस समाधि में बैठ के आप क्या करेंगे, ओम का उच्चारण करें, ओम ओम का उच्चारण करते रहिए। ये ओम क्या है, ये प्रणव ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। और इसके अंदर क्या है, अ जो है ना, जितने भी स्वर है व्यंजन में उनमें सब गया हुआ है। जैसे क होता है क प्लस अ, क होता है फुल क, सब में अ गया हुआ है। और हर शब्द को, हर पूरे चीज को वो व्याप्त है, क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं ना, तो अ में मुंह खुलता है, ऊ अमो में बंद हो जाता है। तो जितने भी शब्द उच्चारण होते हैं वो सब उसके अंदर कवर हो गए, ओम के अंदर में। ये ओम की विशेषता है, सब नाम रूप को वो कवर करता है। तो यहां भगवान के लिए ओम का आलंबन लिया। उपासना नंबर एक के अंदर आलंबन क्या था, आठ लक्षण, कबीम पुराना आठ लक्षण थे। फिर कहते हैं माम अनुस्मरण, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ वो है ध्यान करेगा। ध्यान करते करते यह प्रयाति, प्रयाति मतलब जो व्यक्ति जाता है, कैसे जाता है, त्यजन देहम, शरीर का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है। प्रयाति, शुरू में ही आपको हमने बताया था कि दो मार्ग हैं, एक शुक्ल मार्ग है, एक कृष्ण मार्ग है। तो जैसा जो व्यक्ति इस उपासना को करता है वो शुक्ल मार्ग से जाएगा, उसका और डिटेल भगवान आगे देंगे। शुक्ल मार्ग से वो जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त करता है। परम गति। तो उपासना नंबर एक के अंदर राजयोग था और भक्ति थी, उपासना नंबर दो के अंदर राजयोग है, भक्ति है और ओंकार का आलंबन है। अच्छा भगवान, कोई कोई सरल उपाय है क्या? भगवान अब तीसरी उपासना बताते हैं। इसमें योग अथवा आज्ञा चक्र नहीं है, यह शुद्ध भक्ति का मार्ग है और भक्ति से भी मन एकाग्र हो सकता है, भक्ति से भी मन एकाग्र हो सकता है। तो उपासना नंबर तीन एक श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं, 14वां श्लोक।
अनन्यचेता सततम्, अनन्यचेता सततम्, यो माम स्मरति नित्यशः,
यो माम स्मरति नित्यशः,
तस्याहं सुलभ पार्थ,
तस्याहं सुलभ पार्थ,
नित्ययुक्तस्य योगिनः,
नित्ययुक्तस्य योगिनः,
अनन्नचेता सततम्, यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभ पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः।
अनन्यचेताः सततम् यः माम् स्मरति नित्यशः तस्य अहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। सुलभ, सुलभ मतलब सुखपूर्वक, आसानी से, सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। क्या सहजता है भगवान? राजयोग नहीं है, राजयोग नहीं है, राजयोग कठिन है। अपने प्राणों को नीचे से उठा के कुंडालिनी का जागरण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर ला के यहाँ तक लाना बहुत परेशानी का काम है वो। तो भगवान कहते हैं उसके अंदर वो राजयोग यहाँ नहीं है। यो माम स्मृति तस्य अहम सुलभः, जो मुझे स्मरण करता हुआ उसके लिए मैं सुलभ हूँ, सहज हूँ। यह अनन्य चेता, जिसका मन मुझको छोड़कर अनन्य अन्य कहीं नहीं जाता, यानी विषय में नहीं जाता, यानी मन विषयासक्त नहीं है, विषयासक्त मन नहीं है, स्मरति स्मरण करता है। कैसे? तो भगवान जो है दो एडवर्ब देते हैं स्मरण के लिए, सततम और नित्य सह। सततम मन निरंतर, सर्वेषु कालेषु मई अर्पित मन, अपनी ड्यूटी करते समय भी स्मरण करता है, मतलब बैकग्राउंड के अंदर जो है भगवान का स्मरण कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जैसे म्यूजिशियन का तानपुरा चलता रहता है वैसे ही कंटिन्यूअसली स्मरण चलता रहता है। नित्य सह, नित्य सह मैंने दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक सारा जीवन सगुण भक्ति के लिए करता है और सगुण भक्ति से क्रम मुक्ति होती है और यह योगी प्रेम से मेरा स्मरण करता है। तो भगवान यहाँ पर नित्य सह के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं, नित्य सह इति दीर्घ कालत्तम उच्चते, दीर्घ काल तक करना है। दीर्घ काल का मतलब क्या? न सन्मासम 6 महीने नहीं, न संवत्सरम 1 साल नहीं, वा की तरह यावत जीवन, सारा जीवन, सारा जीवन, नैरंतरम यो माम स्मरति इत्यर्थ, सारा जीवन पर्यंत जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, यानि बिना रुके सदा स्मरण करना है हमको। तस्मात सर्वेषु कालेषु, आगे भी भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु, स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपना कर्तव्य कर्म करो। देखो ठाकुर रामकृष्ण कहते थे, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब आप गृहस्थ आश्रम में हो तो एक हाथ से भगवान को पकड़ो, दूसरे हाथ से अपने गृहस्थ का काम करो, कर्मयोग, अपना कर्म करो मगर भगवान का चिंतन करते रहो। जैसे ही गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाए दोनों हाथ से भगवान को पकड़ो, क्योंकि चित्त शुद्धि हो गई। अगर आपने वेद का अध्ययन किया है ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर, गृहस्थ आश्रम में, उसके हिसाब से अपना गृहस्थ जीवन को पालन किया है तो आपकी चित्त की शुद्धि हो गई, चित्त की शुद्धि हो गई, गृहस्थ आश्रम खत्म हुआ, आप जैसे रिटायर्ड हुए दोनों हाथ से पकड़ो अब भगवान को। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ऐसा आदमी मत चित्त मत परा है, मेरे में ही उसका चित्त है और मैं ही उसका गोल हूं, मैं ही उसका गोल हूं। याने जिसने मुझे अपने हृदय में बैठा लिया है उसके लिए मैं सुलभ हूं। अगर योगी का हृदय शुद्ध है और मेरे नाम गुण लीला में उसका मन रमन करता है तो उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। देखो उपासना 3 में भी क्रम मुक्ति है, उपासना 1 में भी क्रम मुक्ति, उपासना 2 में भी क्रम मुक्ति। और ये जो ऐसे भक्ति का हम करते हैं नाम लेते हुए उपासना भगवान का स्मरण करते करते हम भगवान के लोक में पहुंच जाएंगे, ये भी क्रम मुक्ति है। और ये कैसे होता है? बोले सारा जीवन चेष्टा करनी होती है। गांधी जी ने जब हे राम कहा मरने के टाइम, उस टाइम तो ये नहीं सोचा, वो उनकी वो साधना चलती आई, वो मुख अचानक निकल गया। अब कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि मान लो मरने के टाइम में अगर हम नींद में ही मर गए, होता है ना कई आदमी नींद में मर जाते हैं, कई आदमी को हम लोग देखते हैं कोमा में है, फिर क्या होता है उसका, कौन सी वृत्ति आती है? एक स्वाभाविक प्रश्न होता है हमारे मन के अंदर में। ऐसा तो नहीं होता है सज्ञान ज्ञान पूरा है उसके अंदर हम जा रहे हैं, सबको बोल के जा रहे हैं अलविदा बाय 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 बाय, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप सोए सोए निकल गए या कोमा में पहुंच गए। तो महात्मा लोगों का मानना है कि आप नींद के पहले और कोमा में जाने के पहले वाली जो वृत्ति है वो अगले जन्म का निश्चय करती है। देखो नींद में जाने वाली वृत्ति, नींद में जाने के पहले वाली जो वृत्ति है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा ना कि सोने के टाइम में भगवान का नाम लो पहले, लास्ट थॉट से भी भगवान, और शुरू में जब जागते हैं तभी सुबह में उठ के भगवान का नाम लो। तो उससे क्या होता है, सारी रात आपको भगवान, आप कंटिन्यूस उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका लाभ दे देते हैं, सारी रात का आपको मिल जाता है। बट लास्ट थॉट बिफोर स्लीप भगवान का होना चाहिए, फर्स्ट थॉट भगवान का होना चाहिए। वेदांत का मानना है कि मन में सूक्ष्म वृत्ति नींद एवं कोमा में भी चलती रहती है। देखो ये वेदांत का मानना है, सूक्ष्म वृत्ति नींद में भी चलती है। नींद में कौन सी वृत्ति चलती है? अभावाकार वृत्ति। जागृत में क्या होती है? भावाकार वृत्ति होती है, वृत्ति रहती है, कोई वहाँ पर ऐसा है जो रहता है जो बताता है कि आपका कोई भी वृत्ति वहाँ पर नहीं थी, अभावाकार वृत्ति थी, विषयों की वृत्ति नहीं थी। क्योंकि वृत्ति नहीं थी इसलिए मन शांत था, क्योंकि मन शांत था इसलिए सुख था, मन शांत था इसलिए सुख था। और समाधि में क्या होता है? ब्रह्माकार वृत्ति है, कंटिन्यूसली एक ब्रह्माकार की वृत्ति चलती रहती है। जब ऐसी आप साधना करते हो ना तो कई बार कुछ अद्भुत चीजें होती हैं। जैसे रमन महर्षि ने 8-9 साल की आयु में ही अपने मृत देह को देख लिया था और तब समझ में उनको आ गया कि मैं डेफिनेटली इस देह से अलग हुई हूं। अगर मैं अपनी मृत देह को देख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस देह से अलग हूं। अखंडानंद महाराज ने कहा कि हमने अपनी देह को धू धू करके जलते हुए देखा, मर गया, लोग उठा के सबको ले गए, ले जाके वहां पर जो है सबको चिता पर रख दिया, हम अपने शरीर को चिता पर जलते हुए देख रहे हैं, धू धू जल रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अंतिम वृत्ति क्या है? अंतिम वृत्ति आसक्ति पर निर्भर करती है। आप देखो आपका मन क्या है, विषयासक्त है या भगवान आसक्त है, हमें नहीं बताना होगा, आप खुद चिंतन करो आपका मन क्या, विषयासक्त है और भगवान आसक्त है। अगर विषय आसक्त है तो आप विषय में पहुंच जाओगे, भगवान आसक्त है तो भगवान में पहुंचोगे। नियम बहुत सहज है, अंतिम वृत्ति, उस अंतिम वृत्ति के लिए सारा जीवन की प्रैक्टिस चाहिए। छह महीने एक वर्ष के काम से काम नहीं होगा। तो जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही शरीर में आप जाएंगे, दूसरा शरीर लेगा। ये मन कहाँ है? मन आपका सूक्ष्म शरीर में है। आपने वेदांत में पढ़ा है स्थूल शरीर को हम पंच महाभूत में यहाँ डाल देते हैं जला के। सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? मन में जो लास्ट वृत्ति होगी उसके हिसाब से हो जाएगा। उपासना नंबर एक और उपासना नंबर दो में अंतिम वृत्ति राजयोग से भगवान पर लाई जाती है। देखो उपासना नंबर एक उपासना नंबर दो के अंदर राजयोग के द्वारा हमको आज्ञा चक्र में लाके यहाँ से प्राण निकालने के लिए हमको लाना पड़ता है, भगवान के ऊपर में लाना पड़ता है वृत्ति को। और उपासना त्रि में यह वृत्ति सहज है भगवान की, दीर्घकाल सततम अभ्यास के कारण यह एफर्टलेस है। एफर्टलेस अभ्यास से हो जाता है ना। अब कई बार देखो आप लोग कंप्यूटर में काम करते हो, आपका अभ्यास है। आप क्या कीबोर्ड को देखते हो? आप कीबोर्ड नहीं देखते हो, अभ्यास है। आप स्क्रीन देखते हो ठीक हो रहा है नहीं। और कई बार तो लोग तो वो भी नहीं देखते हैं। आगे के जमाने में जो टाइपराइटर में लिखते थे ना, वो खाली उधर से देखते क्या लिखना हमको टाइप करना करके उधर टाइप करते, अभ्यास है। प्रमिला जी के साथ में एक कीबोर्ड के बजाने के लिए एक सज्जन आते हैं, नाम तो मेरे को याद नहीं है, मगर वो जब बजाते हैं तो इधर उधर देखते, अभ्यास। देखो अब ख्याल करना अगली बार वो बजाएं तो, बजा रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं उसको, देख रहे, अभ्यास है। मुकुंदमाला में राजा श्री कुलशेखर लिखते हैं कि मृत्यु के समय कफ पित्त वायु के असंतुलन से कंठ का अवरोध हो जाता है। देखो उनको भी मालूम है कि हमको उच्चारण करना है, मगर गला कंठ अवरोध हो गया। भक्त भगवान से कहता है कि आप कर्मफल दाता हो, आप देखें कि अंतिम समय आपका स्मरण करता रहूं, आप सारे जगत एवं मेरे शरीर के नियंता हो, आप देखना ताकि मैं भगवान का नाम ले सकूं, अहम ब्रह्मास्मि कह सकूं। भक्त भगवान को देखो ऐसा मुकुंदमाला के अंदर में लेखक ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अंतकाल में आपका नाम ले सकूं, इसलिए हमारा कंठ अवरोध नहीं हो जाए। अच्छा अब प्रश्न उठता है कि इन तीन उपासनाओं का फल क्या है। उपासना तो हमने आज देख ली, उपासना नंबर एक, उपासना नंबर दो, उपासना नंबर तीन, इन तीनों का फल क्या है वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ॐ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।